نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصة قرآن کے سلسلے میں 29 پارے کا فرسٹ روپ دیکھیں گے سورة ملک کی پہلی آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة ملک. سورة ملک بہت ہی خوبصورت سورة ہے. یہاں سے تھوڑا سا پارے کا تھیم بھی بتا دوں. 29 پورا پارا جو ہے دعوت اللہ کے موضوع پہ چلتا ہے. سورة ملک میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے, اس کی بادشاہی کا تذکرہ ہے. ہر سورة کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی اور طریقہ بھی بتا دیا کہ جب کسی نئے بندے سے دین کی بات کرو تو کہاں سے آغاز کرو. اس پوری سورة میں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کروایا گیا ہے اور خاص طور پہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت ایک اتنی بڑی حقیقت ہے اور تم اس دنیا میں آ کے جو بیٹھے ہو تو یہ تمہاری منزل نہیں, راستہ اور گزرگاہ ہے. سورت کی آیتیں اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کو پڑھ کے سوتے تھے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اگر اس کے معنی پہ غور کریں گے تو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ کیوں بچائے گی, کیونکہ جب بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے تو پھر حقیقت میں جہنم سے تو انسان بھاگتا ہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا کو بنایا کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو پہلی بار پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. ان دو آیات میں انسان کو مقصد حیات یاد دلا دیا گیا کہ پہلی بات ہے کہ تمہاری اس دنیا میں سب سے اوپر جس کا حکم چلتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تم 5-6 فٹ کے انسان اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ سمجھو. تم حقیقت میں اس کے ایک اشارہ کن کی وجہ سے چل رہے ہو, اور اگر وہ اشارہ کر دے تو کن کے ساتھ ہی تمہاری زبان رک جائے, تمہارے کان رک جائیں, تو گویا کہ اللہ کی ذات, اللہ کا مقام بیان کیا. پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, آزمائش کا تذکرہ ہے. یہ ہے مقصد حیات, پرپز آف لائف, کہ یہ زندگی ایک صرف کھیل کھلونا نہیں, یہ بائی چانس نہیں ہوا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تم سب ایک کمرہ امتحان میں ہو. کمرہ امتحان کی ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. جواب دہی کا احساس ہوتا ہے, وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے, نظر اپنے پرچے پہ ہوتی ہے, ارد گرد سے بے نیاز, کوئی آئے نہ آئے, کوئی پرچہ کرے نہ کرے, ہم کرنے کو تیار ہیں, اور جتنا وقت ہے اس کو بہترین طریقے سے ڈیوائڈ کریں گے تو آخر میں سرخرو ہوں گے. اس کے برعکس آپ اگر دیکھیں کہ کمرہ امتحان کا فیلنگ ختم کر دیں تو یہ دنیا ایک فن پلیکس دکھتی ہے. صرف مقصد حیات کے معلوم ہونے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. پارٹی میں جانے کے لیے جو تیاری ہو رہی ہوتی ہے وہ کمرہ امتحان میں جانے کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی. تو بس یہ ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کی سوچ کا فرق, کہ مسلمان اس دنیا میں دنیا سجن المومن کے مطابق اپنے آپ کو ہر وقت چیک کراتا ہے کہ میں کتنا زیادہ اس وقت انڈر آبزرویشن ہوں, کیمروں کے اندر مجھے بٹھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے برعکس دوسری طرف مومن کے لیے دنیا کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زندگی کا یہ مقصد سمجھ آ جائے, تمہاری سستیاں ساری ختم ہو جائیں. پھر اللہ کی قدرت, اللہ کی بات کیوں مانو, اس کی مزید قدرتوں کا اظہار ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو تو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. یعنی اس کائنات میں کوئی جھول نہیں ہے تو تمہارے دین کے کاموں میں جھول کیوں ہے؟ کائنات اتنی ڈسپلن کے ساتھ وقت پہ سورج چاند آ جا رہا ہے, اس کے اندر ہر ایک کو اپنے کرنے کا کام پتہ ہے, تو تمہیں کیوں نہیں پتہ؟ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ اللہ نے اتنا پیارا جہان بنایا تو پھر میں نے اس کے دین کے کام کیسے کرنے ہیں. یہ آیت ہمیشہ مجھے دین کے کام کو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین طرح سے کرنے پہ مائل کرتی ہے, کہ جب اللہ نے کسی جگہ کوئی کمی بیشی نہیں رکھی تو میرے اس کام میں کمی بیشی کیوں ہو. اس کے باوجود بھی انسان کے اندر کمیاں بیشیاں رہ جاتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو. فرمائے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے और इन्हें शैतीन को मार भगाने का जरिया बनाया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी, हिफाजत वही। किस तरह अल्लाह दूर दूर से शैतीन को भगा देता है, किस तरह दूर से भी शैतीन इसको सुन नहीं पाते। जैसे कहीं भी कोई बहुत कीमती डॉक्यूमेंट इधर से उधर जाने वाले हों तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है, गाड़ी के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं। तो आप देखिए कि ये वही इलाही जिसमें इंसानों के मुकद्दर के फैसले थे, जिनके जन्नत और जहन्नम में जाने का नुस्खा छुपा हुआ था, उसको अल्लाह ताला ने इतने प्रोटोकॉल से दिया, और आप और मैं आज इस किताब को पढ़ रहे हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम। अल्लाह तो हमारे दिलों की सुन और हमें इस किताब को आसन दर्जे पे करने वाला बना दे। या अल्लाह, तेरे दीन के अंदर कोई तफावत नहीं है, कोई फतूर नहीं है। अल्लाह बार बार देखे तेरी इस दुनिया में, तेरे इस कलाम में कोई झोल नहीं, तो अल्लाह तो हमारे कामों में भी इतनी खैर डाल दे, हमारी सुस्तियों को दूर कर दे, हमारी कमियों कोताहियों को माफ़ करके। या अल्लाह तो हमसे बेहतरीन दर्जे के काम करवा ले और हम इस तरह से इस किताब के हिफाजत करने वाले बन जाएं कि कोई बातिल अफकार हम इसमें शामिल होता ना देख सके। लेकिन कुछ लोग बदकिस्मत हैं, बल्लसीन कफरु बिरब्बी अज़ाबु जहन्नम बिसल मसीर। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है, इनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें फेंके जाएंगे तो इसके धाड़ने की हौलनाक आवाज़ सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी, शिद्दत गज़ब से फटी जा रही होगी। हर बार जब कोई गिरोह इसमें डाला जाएगा, इसके कारिंदे इन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ आया तो था, मगर हमने इसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में शामिल न होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ़ कर लेंगे। लानत है इन दोस्तियों पर। अब देखिए कि ये मंजर सुनने के बाद और इसको तसव्वुर में लाने के बाद तो इंसान कांप के रह जाता है। आज दुनिया में जब हमें मौका मिलता है हिदायत की बात लेने का, किसी एक लीडर के साथ मिलकर लोगों के लिए हिदायत का पैगाम आम करने का, तो कितने थोड़े लोग रह जाते हैं उसमें। कितने ज़्यादा लोग होते हैं जो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कितने थोड़े होते हैं जो अमल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आखिरी दम तक ज़िंदगी के इस काम पे लगे रहते हैं। ये मुसलसल काम है, इसके अंदर कहीं भी कोई आराम की जगह नहीं है, आराम कब्र में होगा। हाँ, इस काम में ही जिसको आराम मिलेगा वो तो कभी नहीं थकेगा। और अल्लाह ताला जहन्नम के किनारे पे खड़ा करके लोगों से कहरवा रहे हैं कि फातरफू बिज़म्बिहिम फसुक लिअस्हाबिस सईर। काश हम सुनते, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मौ नाक़िलू। देखिए कितनी हसरतें हैं। आज लोग कंधे उचकाते हुए सुनने का इनकार करते हैं, हालांकि आपको पता है कि सुनने से ही तो हिदायत के दरवाजे खुलते हैं। कानों से सुनते हैं तो दिल पे जाता है, तो फिर सुनते हैं तो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते आज भड़कती हुई आग में न होते। क्या नहीं दिल चाहता कि इंसानियत को हम इस भड़कती हुई आग से बचा सकें? हम खुद कहाँ भी बुरे बच्चे हैं, हमारे तो अपने भी दामन जहन्नुम के अंदर घर जाने वाले हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए कोशिशें करेंगे तो अल्लाह हमें भी बचने के रास्ते देगा। कोई खुद तो मास्क पहन ले, फायर प्रूफ मास्क है, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले लोग जल रहे हों, उसको कहाँ अच्छा लगेगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ये तड़प लगा दे। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन इनके लिए मग़फ़रत है और बड़ा अजर है। वसिर्रु क़ौलकुम बिजहरू बिहिन्ना अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर। तुम ख्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज़ से, अल्लाह के लिए यकसां है, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया, हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है। 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। शारक से करीब वो ज़ात है, फ़इन्नी करीब की पुकार लगाने वाली ज़ात कहती है कि लोगों मैं तुम्हें जानता हूँ। तो हम अल्लाह को हाजिर करके कहते हैं कि अल्लाह तू हमारे दिलों में मचलते हुए जज्बों को कबूल कर और हमें अपनी इसलाह की तौफीक दे, और या अल्लाह तू हम सबको हकीकत में काम का बना ले, नफ़े वाला बना ले, हम इंसानियत के लिए कुछ करके जाएं। और अगर नहीं तो खौफ ज़दा करने के लिए अगली आयात है, हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध ज़लूलन फ़ामशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही। वही तो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया, चलो इसकी छाती पर और खाओ अल्लाह का रिज़्क, इसी के हजूर तुम्हें दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धसा दे और यकायक ये ज़मीन हचकोले खाने लगे? सोचिए, बैठे बैठे अगर ज़मीन इस तरह झुकने लगे, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? सोचिए ज़रा, हम बैठे और एकदम बड़े बड़े पत्थर हमारे सरों पे पड़ने लगे। फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबी कैसी होती है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग छुटला चुके हैं, फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुखेड़ते नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो इनको थामे हुए हो, वही हर चीज़ का निगेबान है। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर है तुम्हारे पास जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? हकीकत है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। आप देखिए कि जब हम इन आयतों के तर्जमे पर गौर करते हैं तो रात को नींद आती? क्यों अल्लाह के नबी रात को ये पढ़ते थे? इसलिए कि इसके बाद इंसान को ख्याल आता है कि शायद बिस्तर पे लेटा हूँ, उठूँगा भी कि नहीं उठूँगा। जितना एक इंसान अल्लाह के साथ अपने मामले को सीधा करता है, उतने उसके दुनिया के मामले सीधे हो जाते हैं। अल्लाह ताला और झंझोड़ते हैं, अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अम्सका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफूर। या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले? दरअसल ये लोग सरकशी और हक़ से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो शख्स मुंह अंधा किए चल रहा हो, वो ज़्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो? इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, लेकिन हाल क्या है? क़लीलम मा तशकुरून, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। कितना रोने को दिल चाहता है इन आयतों पे। क़लीलम मा तशकुरून, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या सवारी है तुम्हारी, क्या तुम्हारे घरों में गैजेट हैं, तुम्हारे हाथों में खिलौने पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानियाँ। कभी बाहर दुनिया के अंदर नज़र पड़ती है ना, गम पड़ जाता है। कल दो ऐसी जगहों पे गई जहाँ ज़्यादा लोग देखे, एक दीन के नाम पे थी जगह और एक दुनिया के नाम पे। यकीन करें मैं डिप्रेशन में घर आ गई कि अल्लाह तेरे बंदे किधर जा रहे हैं, किसी काम का भी तो हमें ढंग और तरीका नहीं आता। या अल्लाह तुम्हें किन नज़रों से देखता होगा? मैं तो अक्सर आजकल अपने आप को इसी नज़र से देखती हूँ कि अल्लाह तू मुझे कैसे देखता है, अल्लाह तुम्हारी इन कोशिशों को किस निगाह से देखता है, तेरी नज़र में हमारा क्या मुकाम है, क्या जानवरों की ज़िंदगी है आज, क्या नफ्स के पुजारी पेट और बतन के हम पुजारी बने बैठे हैं। ऐसे अंधा धुंध एक भेड़ चाल है, हर गाड़ी एक दूसरी गाड़ी को देखे किधर जा रही है, लेकिन कल पता चल जाएगा कि क्या ज़िंदगी गुजार के आए। ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ताला ने हमारी आंखें दुनिया में खोलने के लिए ये किताब दी। कितने लोग हैं जो इस किताब को समझते हैं, और कितने हैं जो इसको समझना चाहते हैं, और कितने हैं जो इसका हक अदा करना चाहते हैं। अल्लाह हमें शुक्रगुजारों में कर ले। अल्लाह कल पकड़ना ना जितनी तेरी नेमतें हमारे पास है, तो इन सारी नेमतों को हमारे हक में हुज्जत बना दे, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाना। कुल हो अल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? कहो, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर जब ये इस चीज़ को करीब देख लेंगे तो इन लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया। आज दूर लगती है ना क़यामत, कल देखेंगे तो चेहरों पर उसका असर दिखेगा, फिर समझेंगे कि ये क्या करके आए हैं। और उस वक्त इनसे कहा जाएगा, यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाजे कर रहे थे। आप सोचिए, जब अजाब आता है तो इंसान का हाल क्या होता है, क्या उस वक़्त इंसान के दिल पे गुज़रती है। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? एक एक सवाल है, आपने नोट किया सूरत में क्वेश्चन? ऐसा लगता है शोर पे थोड़े बरसते हैं। सोचो, अफामीना आमीन तुम अवामीना, सोचो गौर करो देखो, और आप पूरी सूरत में देखिए क्वेश्चन है। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन करके अगले को शऊर को बेदार करना अच्छा तरीका है। बहुत लंबी चौड़ी बातें करके बस आधा जुमला बोल के आगे चल पड़े, अगला खुद सोच में पड़ा रहे कि मैंने वाकई क्या गलती की है। कुल हुर रहमान आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना। इनसे कहो, वो बड़ा रहीम है, इसी पर हम ईमान लाए और इसी पर हमारा भरोसा है। अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला दे। इतना पीते हो, इतना खाते हो, क्या इसलिए खाते हो कि नफरमानियां करो? आज जमीन तुम्हें पानी देना छोड़ दे तो तुम देखो कैसे मुर्दों की तरह पड़े हो जमीन पे, किसी दरख्त की छाल में और तुम्हारी खाल में कोई फर्क ना दिखे। जिस तरह सूखी धरती चटक चटक के पानी मांग रही होती है, तुम भी इस तरह मुंह खोल खोल के सूरज के नीचे जल के राख हो जाओ और तुम्हारे पास कुछ ना हो, क्यों नहीं सोचते? तो ये थी सूरत मुल्क जो रात को पढ़ के सोते हैं, शऊर पे थोड़े बरसाने वाली सूरत। अल्लाह हमारा शऊर खोल दे। अगली सूरत कलम है, इसका टॉपिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रिसाला। पहली सूरत में अल्लाह और उसकी कुदरत की बात है, अब नबी के मुकाम की बात है। और इस सूरत में हम सबको सबक सिखा दिया कि किस तरीके से जब कोई दीन के रास्ते में मुखालफतें करे, एतराज़ात करे, तो उसके मुकाबले में कैसे सब्र और इस्तकामत के साथ काम करना है। अगर लोग तुम्हें दीवाना कह दें तो कोई बात नहीं, तुम अखलाक की बुलंदियों पर रहोगे, लोग तुम्हें कभी बुरा नहीं कह सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत नून। और इसका आप देखिए कि कलम के साथ दूसरा नाम सूरत नून भी है, रुफे मकत्तात में से एक लफ्ज़ है। वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उस चीज़ की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि यहाँ किस कलम की बात है, तो कलम से मुराद यहाँ तकदीर लिखने वाला कलम भी है, कुरान लिखने वाले कलम भी हैं। रिवायत में हमें यहाँ तक पता चलता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को पैदा किया वो कलम था, फिर उसको कहा उक्तुब, लिख, और उसने लोगों की तकदीरें लिखी। यहाँ से कलम की अहमियत भी देखिए, पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, यहाँ क्या है कलम, सूरह रहमान में क्या रहमान अल्लाम अल कुरान। तो इससे इस्लाम का मिजाज समझ आता है कि इस्लाम इल्म दोस्त मजहब है। और आज उम्मत का हाल देख लीजिए, इल्म से ऐसे भागते हैं जैसे कोई बिजली के तार से भागने लगे। मानता भी नेमती रब्बी कभी मजनून, और तुम यकीनन अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो, और यकीनन तुम्हारे लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं, और बेशक तुम अखलाक के बड़े मर्तबे पर हो। अन करीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन जुनून में मुब्तला है। तुम्हारा रब इन लोगों को भी खूब जानता है जो इसकी राह से भटके हुए हैं, और वही इनको भी अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त पर है। बस तुम इन झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज़ ना आओ। ये तो चाहते हैं कि तुम कुछ सुस्ती करो तो ये भी सुस्ती करने लगे। मुदाहनत का मानी ये होता है कि लूज़ हो जाना, ज़रा ठंडे हो जाना, तुम ज़रा सी एक दिन की बात छोड़ो, हम तुम्हारे दूसरे दिन की बातें खुद ही छुड़वा देंगे। दुहन चर्बी को कहते हैं, मतलब यह कि तुम दीन की तबलीग में कुछ ढीले पड़ जाओ तो ये भी तुम्हारी मुखालफत में कुछ नरमी अख्तियार कर लें, या तुम इनकी गुमराहियों की रियायत करके अपने दीन में कुछ कमी करने पर आमादा हो जाओ तो ये तुम्हारे साथ सुलह करें, यानी इनकी मर्ज़ी का दीन पेश कर दो तो ये मान जाएंगे। एक बात मानोगे तो अगली मनवाने लग जाएंगे। आज भी देखिए कि जो लोग दीन की दावत देते हुए बहुत ज़्यादा लोगों को रुख्सतें देने लग जाते हैं, फिर वो एक वक्त आता है कि असल दीन से बहुत दूर जा चुके होते हैं। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। वला तुती कुल्ला हल्लाफ महीन हम्माज़ मशाएं बिन नमीम, हरगिज़ न दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला बेवकत आदमी है, ताने देता है, चुगलियाँ खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म व ज्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बदामाल है, जफाकार है, और इन सब अयूब के साथ बदअसल भी है। ये इस बिना पर कि वो बहुत माल और औलाद रखता है। ये देखिए, माल और औलाद अपनी जगह बुरा नहीं है, लेकिन जब लोग इस माल और औलाद के नशे में अल्लाह के साथ बोलने लगें, बदतमीज़ियों पे आने लगें, तो ऐसे लोगों को फिर बता दिया गया कि इनकी ज़ुबान खुलती भी इसलिए कि पेट भरे हुए हैं। चार वक्त का फाका इनके आए, होंठों पे पिपड़ियां जम जाएं, बोल ना सकें, तो सब पता चल जाएगा कि हम लोगों ने किस रब की बात माननी है। बिल्कुल घटिया और जलील शख्स का आप देखिए कि नक्शा सामने आता है ना, और आप देखिए जो वही से कटता है वो खुद भी जलील होता है, दूसरों को भी जलील करता है। फिर मन्ना लिल खैरी, खैर से रोकने वाला, माल से भी रोकता है, यानी अल्लाह के रास्ते में माल भी नहीं लगाता, और खैर से मुराद भलाई भी है, भलाई से भी रोकता है। माल के मानी में लेंगे तो मतलब बखील और कंजूस है, किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं देने का रवादार, दीन पे तो लगाने का इसका दिल ही नहीं है। और नेकी और भलाई के मानों में लें तो हर नेक काम में रुकावटें रुकावटें, इस्लाम से लोगों को रोकने में सरगर्म है। उतुल का लफ्ज़ आया है, ऐसे शख्स को कहते हैं जो हट्टा कट्टा और बहुत खाने पीने वाला हो, लेकिन बदखोल को, झगड़ालू और सफ़ाक हो। जनीम अरब में वलदुज़्ज़िना के लिए बोला जाता था, जो किसी एक ख़ानदान का फ़र्द ना हो बल्कि उनमें शामिल हो गया हो, और जो शर्क की वजह से मशहूर हो जाए उसको भी लोग जनीम कहते थे। आप देखिए ये कोई एक शख्स था कि नहीं, लेकिन आज का कल्चर आपको बोल बोल के दिखा रहा है कि जब लोग वही से कटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नफ्स के पीछे पड़ के बिल्कुल वो इसी किस्म के कामों में पड़ जाते हैं और उनको अल्लाह का दीन बहुत बुरा लगता है। मन्नाए लिल खैर मोतदे नसीम, एक एक बात सुनते वक्त देखिए आपके दिल को क्या लगता है। खा चुगलियाँ खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म ज्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बदामाल जफाकार है, बदअसल है, बिल्कुल एक घटिया दर्जे के इंसान का तसव्वुर आता है इस बिना पर कि वो बहुत माल और औलाद रखता है। जब हमारी आयात उसको सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये तो अगले वक्तों के अफसाने हैं, अन करीब हम इसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। ये इज्जत का मसला बनाता था ना, इस इज्जत के लिए अल्लाह के दीन को छोड़ता था, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इसको फिर बताएंगे कि ये इज्जत तुम्हारी कैसी है और क्या हकीकत में तुम बड़ी नाक वाले थे, बड़ी इज्जत वाले थे। आज आप खुद सोचें कितने गुनाह हम सिर्फ अल्लाह के नाफरमानी के कर लेते हैं लोगों के लिए, इज्जत के लिए। इज्जत का मसला है, दुनिया में रहना है इज्जत रखनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहता है कि इन लोगों को बता दो तुमसे भी बड़े लोग गुजर चुके। एक किस्सा है जिसको बाग वालों का किस्सा कहा जाता है। इन्ना बलौना हम कमा बलौना असहाबल जन्नति ज़क़सम ला यस्रिमुन्ना मुस्बिहीन, हमने अहले मक्का को इसी तरह आजमाइश में डाला जिस तरह एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे ज़रूर अपने बाग के फल तोड़ेंगे, और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। इस्तिस्ना से मुराद क्या है? इल्ला माशाल्लाह, यस्तस्नून है ना, यानी एग्जेम्प्ट करना। जब हम कहते हैं ना इल्ला माशाल्लाह, तो इसके अंदर हमारा मफहूम यही होता है कि हम अल्लाह सुबहाना ताला के बारे में ये कहते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, हाँ मगर अल्लाह ताला कर सकता है। तो इसके लिए अरबी ज़बान में इस्तिस्ना का लफ्ज़ आता है। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ मिन रब्बिक वहुम नाइमून फ़असबत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बहीन अनयग्दु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, रात को वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे रब की तरफ से एक बला इस बाग पर फिर गई और उसका ऐसा हाल हो गया जैसे कटी हुई फसल हो। सुबह इन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा कि अगर फल तोड़ने हैं तो सवेरे सवेरे अपनी खेती की तरफ निकल चलो, चुनाचे वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में ना आए। वो कुछ ना देने का फैसला किए वे सुबह सवेरे जल्दी जल्दी इस तरह वहाँ गए जैसे वो फल तोड़ने पर कादिर हैं, मगर जब बाग को देखा तो कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम महरूम कर दिए गए। इनमें से जो सबसे बेहतर आदमी था इसने कहा मैंने तुमसे ये कहा ना था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। कालू सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना जालिमीन, वो पुकार उठे पाक के हमारा रब वाकई हम गुनाहगार थे। फिर उनमें से हर एक दूसरे को मलामत करने लगा। आखिर को उन्होंने कहा अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे, वईद नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे बेहतर बाग अता फरमाए, हम अपने रब की तरफ रजू करते हैं। ऐसा होता है अजाब और आखरत का अजाब इससे भी बड़ा है, काश ये लोग इसको जानते। यानी किसी की खड़ी फसल तबाह हो गई, आखरत में इसी तरह खड़ी की हुई फसलें सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ज़ाया होने वाली नेकियों से बचा के रखे और हम अल्लाह ताला के कामों को और अल्लाह ताला की रहमत के साथ इन सारी बातों को लेकर चले। किस तरीके से अल्लाह की ज़ात इन सारी बातों के अंदर आता है और उसने हम सब के लिए ये सारी बातें जो हैं वो रखी, क्यों रखी? ताकि हम उसकी इन सारी चीज़ों को लेकर आज दुनिया में आंखें खोलें। आप देखिए कि दुनिया में दौलत के नशे में चूर होकर अपने आप को कितना इंसान बड़ा समझता है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो अल्लाह ताला फिर उस पे बंदे को पकड़ता है। या आप देखिए कि इन्होंने रजू कर लिया और रग़बत भी है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को आगे खुशखबरियाँ देते हैं। इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नात नईम, यकीनन अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए इनके रब के हाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या हम फरमाबरदारों का हाल मुजरिमों का सा कर देंगे? तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम कैसे हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए ज़रूर वहाँ वही कुछ है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो? या फिर क्या तुम्हारे लिए रोज़े क़्यामत तक हम पर खुद अहदो पैमान साबित है कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसका तुम हुक्म लगाओगे? इनसे पूछो तुम में से कौन इसका ज़ामिन है, या फिर इनके ठहराए हुए कुछ शरीक हैं जिन्होंने इसका ज़िम्मा लिया हो? ये बात है तो लाएं अपने इन शरीकों को अगर ये सच्चे हैं। यानी सब में रद्द है इस बात का कि अल्लाह के सामने किसी की जोर नहीं चलता। कोई दलील को हुज्जत दिखा दो कि तुम अपनी बेअमलियों के बावजूद जन्नत जाओ। आज देखिए बहुत सारे मुसलमान क्या इसी बात की उम्मीद में नहीं बैठे हुए, क्या फना जलुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, अरे कुछ नहीं होता, अरे छोड़ो ये ऐसी टू मच है। ये स्टाइल क्या है? कि नहीं ये सब बेवकूफ़ हैं जो लगे हुए हैं दिन रात दीन के साथ, और आप बस इनको रोको और बस बहुत होगी और कितनी देर, और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे से पहले ही इंसान की नेकियों को ख़त्म करा दे और दूसरे लोग मौत करो। देखो वो अक्लमंद है, वो अपनी दुनिया बना रहे हैं, वो किस तरह से अपने इन कामों को संवार रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनको आखिरत याद दिला दो, क्या हालात होने वाले हैं उस दिन जब ये इनके पास क़यामत आएगी, इनकी मौत आएगी। यौम युक्शफुन साक व युदउन इलस सुजूद, जिस रोज़ सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे, इनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। ये जब सही सालिम थे तो इस वक्त इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था और ये इनकार करते थे। पस ए नबी, तुम इस कलाम के झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो, हम ऐसे तरीके से इनको बतदरीज तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इनको खबर भी ना होगी। मैं इनकी रस्सी दराज किए देता हूँ, मेरी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। क्या तसव्वुर आता है कि इस तरह से अल्लाह ताला इनको मौके दे रहा है कि अपनी इसलाह कर लो, नहीं करोगे कल पकड़े जाओगे। यहाँ से आप पता चलता है कि बास दफ़ा बंदे की नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह उसकी रस्सी लंबी करता है ताकि उसको ज़ोर से पकड़ सके। बाकी रह गई बात कि आपकी बात ये क्यों नहीं मानते। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुसक़लून, क्या तुम इनसे कोई अजर तलब कर रहे हो कि ये उस चट्टी के बोझ तले दबे जा रहे हो, क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिख रहे हो। अच्छा, अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो। फसबिर लि हुक्मि रब्बिक वला तकुन का साहिबिल हूत, और मछली वाले यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाओ जब उन्होंने पुकारा जबकि वो गम से भरे हुए थे। अगर उसके रब की मेहरबानी उसके शामिल हाल ना होती तो वो मजमूम होकर चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। आखिरकार उसके रब ने उसे बरगजीदा फरमा लिया और उसे सालेह बंदों में शामिल कर दिया। वहीं यकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिकून कभी अबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यकूलून इन्नहू लमजनून, जब ये काफिर लोग कलाम नसीहत यानी कुरान सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी नज़रों से देखते हैं कि गोया तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि ये ज़रूर दीवाना है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है। अब देखिए कि लोग इस किताब को पढ़ने पढ़ाने और सीखने सिखाने वालों को दीवाना कहते हैं, उनको समझ नहीं आता ना इनको मिलता क्या है। लोग ये सोच लेते हैं कि अच्छा कोई इनका अपना फ़ायदा तो होगा, ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बगैर फ़ायदे के कोई काम करे। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं कुछ नहीं, चले शोहरत का शौक तो होगा, चले कुछ तो होगा। अल्लाह कहते हैं इनको बता दो, छोड़ो तुम इन बातों पे कि इनको क्या मिलता है, तुम ये देखो कि तुम क्या छोड़े हुए हो, एक जिक्र है एक नसीहत। तो यहाँ देखिए कि कुरान को नसीहत कहकर हम सबको नसीहत दिलाई गई कि आज इस रिमाइंडर को नोट करो। कितना रिवाज है ना आज रिमाइंडर्स लगाने का, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर। इसके अंदर इंसान देखे तो ये आखिरत हमें मौत का रिमाइंडर देती है कि नहीं देती? क्या हम वाकई इसको लेकर चलते, क्या इसकी नसीहत पे अमल करते? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आंखें खोल दे, हमें इस दुनिया में कुछ दिन जो मोहलत देता है अल्लाह, बेहतरीन काम कराए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमने कुरान पढ़ा, इस कुरान के पढ़ने के सबब अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, दीन और दुनिया के कामों को आसान करे, अपनी रहमत से इसमें आसानियाँ पैदा कर दे। आप सोचिए कि दुनिया लोगों को कितने गम है ना, कई बच्चों की शादियों का, कई रिश्तों का, कहीं जॉबों का, कहीं कारोबार का, कहीं घर का। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला सिर्फ ये तड़प ही कबूल कर लेना, किस बंदे को गम क्या है, खुशी है तो इस बात की कि दीन का काम ठीक चल रहा है। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं कम अज़ कम अपने बारे में तो ये कह सकती हूँ, पिछले कई साल हो गए खुशियाँ या गम इस दीन के साथ है। उस दिन दिल खुश होता है जब दीन की कोई खुशी की खबर मिलती है, और उस दिन दिल उदास और गमज़दा होता है जिस दिन दीन में कोई कमी है, जिस दिन दिल में कोई मलाल है, गम है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह हमारी बदअमलियों को पीछे करके सिर्फ हमारी ये तड़प कबूल कर ले कि अल्लाह हम तेरे दीन का काम भी आसन दर्जे पे क्यों नहीं कर पा रहे। यहाँ पे रो पूरा हुआ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।